हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बिल्कुल, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा। सही वक्त आने पर हमारे बीच की इन दूरियों का अंत जरूर होगा। तुम्हारी मेरे प्यार को महसूस करने की इच्छा जल्द ही पूरी होगी, और एक बार तुमने मेरे प्यार की गहराइयों को महसूस कर लिया तो ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हें मेरे प्यार के अलावा और कुछ याद नहीं रहेगा। अभी तो नहीं, क्योंकि अर्श अभी बहुत छोटा है, पर आगे चलकर तुम हमारे बच्चे को जरूर जन्म दोगी। अब खुश हो तुम? प्रीति ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़कर आयुष्मान के सीने में अपना सिर छुपाते हुए अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया। आयुष्मान ने भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसके सिर को चूमा। अभी वे ठीक से एक दूसरे को महसूस भी नहीं कर सके थे, अपने तड़पते बेकरार दिल को ठीक से सुकून भी नहीं पहुंचा सके थे कि अर्श किलकारियां मारकर रो पड़ा। प्रीति झट से आयुष्मान से दूर हट गई और दोनों ने निगाहें अपने बेटे की तरफ घुमा ली, जो आंखें बंद किए हुए ही रो रहा था। शायद भूख लगी है उसे, तुम देख लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आयुष्मान ने इतना ही कहा और झट से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। प्रीति पहले तो जाते हुए आयुष्मान को देखती रही, फिर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। कुछ देर बाद आयुष्मान वापस कमरे में आया तो अर्श प्रीति की गोद में सो रहा था और प्रीति प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। बाथरूम के दरवाजे की आवाज़ कानों में पड़ने पर प्रीति ने उस दिशा में निगाहें घुमाई और नजरें आयुष्मान की निगाहों से जा टकराईं। दोनों के लबों पर प्यारी सी मुस्कान सज गई। आयुष्मान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराकर सवाल किया, सो गया शैतान? हाँ, रात भर हमें जगाया और अब खुद सुकून की नींद ले रहा है, प्रीति ने नाराजगी जताते हुए कहा और बुरा सा मुंह बना लिया। असल में बीती रात अर्श ठीक से सोया नहीं था। जब जब प्रीति और आयुष्मान की आंख लगती, उसका रोना शुरू हो जाता, जिससे दोनों की नींद खराब हो जाती। आधी रात के बाद जाकर वे सो पाए थे। उनकी नींद तो पूरी नहीं हुई, पर उनका बेटा अब सुकून की नींद ले रहा था। प्रीति की बात सुनकर आयु हंस पड़ा, बच्चा है वो अभी, उससे इतनी नाराजगी ठीक नहीं, आयुष्मान ने अर्श को उसकी गोद से लेकर बिस्तर पर सुलाते हुए कहा। उसकी बात प्रीति को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। उसने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुंह फुलाए हुए बोली, लाइए मेरा गिफ्ट निकालिए। आयुष्मान ने प्रीति की बात सुनकर पहले उसके आगे बढ़े हाथ को देखा, फिर प्रीति की तरफ निगाहें घुमाते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं तो अपना दिल और जान बहुत पहले तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, इससे बढ़कर और क्या गिफ्ट दूं तुम्हें। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति तुनकते हुए बोल पड़ी, मुझे आपके दिल और जान में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो पहले ही मेरा है, पर इससे बात नहीं बनने वाली। हमारी पहली एनिवर्सरी है तो आपको मुझे गिफ्ट देना ही होगा, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और आपके साथ आपके दोस्त की शादी में भी नहीं जाऊंगी। प्रीति ने आयुष्मान को धमकाया और हाथ बांधे मुंह फुलाए उसे देखने लगी। अब अपनी रूठी दिलरुबा को मनाने के लिए आयुष्मान को कुछ तो करना ही था, और प्रीति की जिद देखकर लग नहीं रहा था कि बिना गिफ्ट लिए वो मानने वाली है। आयुष्मान ने अब उसे कुछ कहा नहीं, चुपचाप उठकर बैग के पास चला आया। बाहर की चेन खोलकर उसने कुछ पेपर्स निकाले और वापस प्रीति के पास चला आया। आयुष्मान ने जैसे ही उसकी तरफ उन पेपर्स को बढ़ाया, प्रीति ने उन कागजों को घूरते हुए तुनकते हुए कहा, मैंने गिफ्ट मांगा है, रद्दी के कागज नहीं। मेरी जान, पहले देख तो लो कि किस चीज के पेपर्स हैं ये, उसके बाद अगर गिफ्ट पसंद ना आए तो पूरे हक से नाराज हो जाना। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति ने बुरा सा मुंह बनाया और उन पेपर्स को लेकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पेपर्स पास रही थी, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। सब पेपर्स को पढ़ने के बाद उसकी आश्चर्य भरी निगाहें आयुष्मान की तरफ घूम गईं। आयुष्मान ने उसकी हथेली को अपनी हथेली से थाम लिया और मुस्कुराकर कहना शुरू किया, तुमने एक बार मुझसे सवाल किया था ना कि तुम्हारा खुद का घर कौन सा है, और तब मैंने तुमसे कहा था कि जो मेरा है वो सब तुम्हारा है, तो अब कानूनी रूप से जो भी मेरा है उस सब की ओनर तुम बन चुकी हो। वो घर जिसे अपार्टमेंट से घर तुमने बनाया, अब से तुम्हारा है। मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं और जो भी मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, उन सब की नॉमिनी अब से तुम हो। इसके साथ मैंने तुम्हारे और अर्श के नाम RD भी करवा दी है। धीरे धीरे हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे कटकर तुम्हारे और अर्श के नाम पर सेव होते जाएंगे, जो आगे चलकर तुम्हारे और अर्श के काम आएंगे। तुम्हारा और उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। आयुष्मान जैसे ही चुप हुआ, प्रीति ने हैरानगी से सवाल किया, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत थी, तुम और अर्श मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली का ध्यान रखना, उनके भविष्य की प्लानिंग करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें अर्श को कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं तुम दोनों की हर जरूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। तुम दोनों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे अभी से सोचना होगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरी कि रिटायरमेंट के बाद भी पैसे आते रहेंगे, इसलिए मुझे अभी से भविष्य के बारे में सोचना होगा ताकि तुम और अर्श दोनों बिना किसी चिंता के जिंदगी जी सकें। फिर अभी अर्श छोटा है तो खर्च कम है, अभी सेविंग भी हो जाएगी, पर जब वो बड़ा होगा, स्कूल कॉलेज जाएगा तो खर्च बढ़ेंगे, इसलिए अभी से सोचना पड़ेगा मुझे ताकि उसे उज्जवल भविष्य दे सकूं और बुढ़ापे में तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए अपने बेटे या पति के आगे हाथ न फैलाना पड़े। फिर जिंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पीछे तुम्हें और अर्श को कोई तकलीफ हो या तुम दोनों को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, इसलिए अभी से सब सोचना ही ठीक है। वैसे तो अब तुम भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई है, पर फिर भी तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं जितना कर सकूंगा उतना जरूर करूंगा। प्रीति की आंखों में नमी तैर गई थी उसकी बातें सुनकर, और वो आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई।